जर्मनिक अर्थात ट्यूटानिक यह भारूपीय परिवार का एक महत्वपूर्ण परिवार है। अंग्रेजी इसी उपपरिवार की भाषा है जो प्रयोग की दृष्टि से संसार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है। इस उपपरिवार की सबसे प्राचीन भाषा गाथिक है, पर आज यह लुप्त प्राय है। ईसा की चौथी शताब्दी का बाइबिल का अनुवाद गाथिक की सबसे प्राचीन रचना है। इस उपपरिवार की जर्मन और डच भाषाओं का प्रसार भी उल्लेख्य है। साहित्य दर्शन ज्ञान की दृष्टि से अंग्रेजी पर्याप्त महत्वपूर्ण है। यूँ दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में जर्मन का महत्व अंग्रेजी से बढ़कर माना जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जर्मन का महत्व बहुत अधिक है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में जितना काम जर्मन में हुआ है उतना अंग्रेजी में नहीं। इस उपपरिवार की प्रमुख भाषाएं हैं आइसलैंडी, डेनी, नॉर्वेई, स्वीडी, अंग्रेजी, उच्च और निम्न जर्मन, डच, फ्लेमी। विशेषताएं: इन भाषाओं में अयोगात्मक की प्रवृत्ति नजर आती है। यद्यपि प्रारंभ में ये योगात्मक थी, जर्मन आज भी बहुत कुछ योगात्मक है। दूसरा, जर्मनिक शाखा की भाषाएं ध्वनि परिवर्तन के कारण उल्लेख्य हैं। तीसरा, क्रियाएं सबल और निर्बल दो भागों में विभक्त हैं। सबल क्रियाएं वे हैं जिनमें धातु के अंतर्वर्ती स्वर में ही परिवर्तन करके भूतकाल बना लिया जाता है, जैसे कम का केम, सी का सा, इट का इट, ब्रेक का ब्रोक आदि। निर्बल क्रियाएं वे हैं जिनमें प्रत्यय जोड़कर भूतकाल बनाया जाता है, जैसे लव लव्ड, वाक वाक्ड। चौथा, सभी भाषाओं में बल का प्रयोग होता है, केवल स्वीडी में स्वर का प्रयोग शेष है। चौथा, केल्टिक। लगभग 2000 वर्ष पूर्व केल्टिक शाखा की भाषाओं का प्रयोग यूरोप के बड़े भूभाग ब्रिटेन, फ्रांस, उत्तरी इटली से लेकर एशिया माइनर आधुनिक तुर्की तक होता था। केल्टिक भाषा के प्रयोक्ता बड़े युद्धप्रिय और साहसी थे। इन्होंने इस भूभाग में अपना राज्य विस्तार कर रखा था। बाद में रोमनों के प्रभुत्व और राज्य विस्तार के साथ साथ केल्टिक जाति और केल्टिक भाषा का ह्रास आरंभ हुआ। आज इस शाखा का भाषाओं के बोलने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है और उनका राजनीतिक और अन्य महत्व भी समाप्त प्राय है। केल्टिक शाखा की भाषाएं आज उत्तर पश्चिमी फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और कार्नवाल में बोली जाती है। इनमें आयरलैंड की आयरिशिस और वेल्स की वेल्स इस समय इस उपपरिवार की मुख्य भाषाएं हैं। इसके अतिरिक्त मॉन, स्कॉच, ब्रिटेनी और गाल भी इस उपपरिवार की उपभाषाएं हैं। विशेषताएं: पहला, भारतीय परिवार में भाषा विज्ञान की दृष्टि से केल्टिक भाषाएं सबसे कठिन और अस्पष्ट हैं। केल्टिक भाषाओं के शब्दों में इतना अधिक परिवर्तन हो गया है कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल होता है। इन परिवर्तनों के आधार पर ध्वनि प्रक्रिया संबंधी नियमों की परिकल्पना भी टेढ़ी खीर है। दूसरा, संज्ञा के रूप अंग्रेजी के समान विश्लिष्ट हो गए हैं। तीसरा, वाक्य रचना की दृष्टि से भी इस शाखा की भाषाएं अत्यधिक जटिल हैं। इसलिए कुछ विद्वानों की कल्पना है कि इस शाखा की वाक्य रचना का आधार अभारोपीय है। वे बर्बर भाषा को केल्टिक की वाक्य रचना का आधार मानते हैं। चौथा, भारत यूरोपीय की प ध्वनि केल्टिक का एक शाखा में प रहती है और दूसरी में क के रूप में परिणत हो जाती है। इस ध्वनि परिवर्तन के आधार पर कुछ लोगों ने इस परिवार की भाषाओं को प वर्ग और क वर्ग में बांटा है। क वर्ग में आयरिश, स्कॉच, मॉक्स एवं प वर्ग में वेल्स, कार्निस, ब्रिटेन, गालिक भाषाएं आती हैं। पांचवा, तोखारी। केंतुम समुदाय के इस उपपरिवार का पता 20वीं शताब्दी में उस समय लगा जब पूर्वी तुर्किस्तान से प्राप्त कुछ पत्रों एवं ग्रंथों का अध्ययन किया गया। यह भाषा भारोपीय परिवार की भाषा थी। इसका तोखारी नाम इस भाषा की बोलने वाली जाति तोखार अथवा तोशार के नाम पर पड़ा। तोखारी में प्राप्त सामग्री ईसा की प्रथम शताब्दी से पूर्व की है। महाभारत में तुषार शब्द से तोखारी का उल्लेख मिलता है। तोखारों का राज्य मध्य एशिया में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से सातवीं शताब्दी ईस्वी तक था, जिसे हूणों ने विनष्ट कर दिया। इसका क्षेत्र मध्य एशिया अर्थात तुर्फान है। स्थान निकटता के फलस्वरूप तोखारी पर यूराल अल्ताई भाषा का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। विशेषताएं: पहला, तोखारी में भारोपीय के स्वर सरल हो गए और स्वर मात्राएं उपेक्षित हो गई और व्यंजनों की संख्या भी बहुत कम है। भारोपीय स्पर्श व्यंजन में भी केवल तीन प त क शेष है। दूसरा, कारकों की संख्या 9 है। प्रधान कारक 3 ही हैं, कर्ता, कर्म और संबंध, जिनके एक वचन रूप भारोपीय रूप के समान है। बहुवचन में केवल कर्ता और कर्म के रूप में ही भारत यूरोपीय के समान है। अन्य कारकों का बहुवचन अश्लिष्ट योगात्मक पद्धति से बनता है। तीसरा, इसमें द्विवचन भी मिलता है। चौथा, सर्वनाम भारोपीय के ही हैं। पांचवा, संख्यावाचक शब्द भी भारोपीय के ही हैं। सो का वाचक कंद शब्द तोखारी को केन्तुम वर्ग की भाषा सिद्ध करता है। छठा, क्रिया रूप में जटिलता पाई जाती है। छवां, हित्ती 20वीं शताब्दी के आरंभ में एशिया माइनर के बोगाजाकोई तुर्की में अंकारा से 90 मील पूर्व गांव की खुदाई से प्राप्त सामग्री से हिताई अथवा हित्ती भाषा का पता लगा। यह मिट्टी की चौड़ी पटिकाओं पर किला अक्षरों से लिखे अभिलेख हैं, जिनका समय ईसा पूर्व 2000 के लगभग आका गया। हित्ती के ये अभिलेख भारत यूरोपीय परिवार के प्राचीनतम लेख माने जाते हैं। इन अभिलेखों में अनेक सुमेरी और अक्कदी भावलेख भी हैं, जिनके कारण बहुत दिनों तक निर्णय नहीं हो पाया कि हित्ती वस्तुतः किस परिवार की भाषा है। सुमेरियन एवं अक्केडियन भाषाओं के प्रभाव के कारण इसे सेमेटिक परिवार की तथा सामी से उत्पन्न माना जाता था, किंतु यह निश्चित रूप से भारोपीय परिवार की केन्तुम वर्ग की भाषा है, क्योंकि भारोपीय भाषा की कुछ खास विशेषताएँ केवल हित्ती में ही दिखाई पड़ती हैं। भारोपीय से हित्ती का वही संबंध है जो ग्रीक या संस्कृत का इतालिक से। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि तोखारी और हित्ती सबसे पहले भारोपीय परिवार से अलग हुई, इसलिए स्टंटवेंट जैसे कुछ भाषा वैज्ञानिक भारोपीय परिवार को भारत हित्ती परिवार कहने के पक्षपाती हैं। विशेषताएं, पहला, हित्ती की संज्ञा और विशेषणों तथा सर्वनाम में केवल दो ही लिंग पाए जाते हैं, पुलिंग और नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग का अभाव है। यह विशेषता इस परिवार की किसी दूसरी भाषा में नहीं पाई जाती है। दूसरा, भारोपीय कारकों में से हित्ती में केवल 6 कारक हैं, अधिकरण उपेक्षित है। भारोपीय सर्वनामों से हित्ती के सर्वनामों की अत्यधिक समानता है। चौथा, प्राचीन भारोपीय की अपेक्षा हित्ती की क्रियाओं में सरलता है। पांचवा, काल 2 हैं, वर्तमान और भूत। सातवा, बाल्टो स्लाविक। इस परिवार के 2 शाखाएं हैं, बाल्टिक एवं स्लाविक। कतिपय विद्वान इन्हें 2 उप परिवार में भी मानते हैं, पर बहुमत इन्हें एक साथ रखने का है। बाल्टिक की उप बोलियाँ हैं लिथुआनी एवं लेती। स्लाविक 3 वर्गों में विभक्त हो जाती है, पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी। पूर्वी में महारूसी, श्वेत रूसी, लघु रूसी, पश्चिमी में पोलोचेक, स्लोवाक एवं दक्षिण में बुल्गारी। सर्वोक्रोतो तथा स्लोवेनी बोलियाँ बोली जाती हैं। इस उप परिवार की भाषाएं मुख्य रूप से बल्गेरिया, पोलैंड एवं चेकोस्लोवाकिया में बोली जाती हैं। क, बाल्टिक। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित लिथुआनिया और लातविया नामक 2 छोटे देशों की भाषाएं हैं, इस शाखा के अंतर्गत आती हैं। महायुद्ध के पूर्व ये दोनों स्वतंत्र देश थे, किंतु बाद में ये सोवियत संघ के अंग बन गए। लिथुआनी आज भी पूर्णतः श्लिष्ट है और वैदिक संस्कृत से मिलती जुलती है। यह भाषा उस क्षेत्र की भाषा है जो ब्राह्म्य प्रभाव से लगभग मुक्त है। लिथुआनियन भारोपीय परिवार की सबसे प्राचीन भाषा है। इसमें साहित्य न के बराबर है, पर यह भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा है। ख, स्लाविक। पूर्वी स्लाविक की महारूसी या रूसी सोवियत संघ की राष्ट्रभाषा है। शासन, शिक्षा, प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक साहित्य में उसी का प्रयोग होता है। रूसी का साहित्य 18वीं सदी से आरंभ होता है, तब भी इसमें प्रभुत साहित्य उपलब्ध है। तुर्गेनेव, दास्तेयेवस्की, चेखव, तालस्तोय, गोर्की आदि इसके प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। यह बड़ी समर्थ एवं सबल भाषा है। पश्चिमी स्लाविक की पोली, चेक एवं स्लोवाक प्रमुख बोलियां हैं। पोली पोलैंड में एवं चेक चेकोस्लोवाकिया में बोली जाती है। पोली का साहित्य 12वीं शताब्दी से मिलता है। इसका आधुनिक साहित्य भी पर्याप्त संपन्न है। चेक का प्राचीन साहित्य तो महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु पिछली शताब्दी में इसमें भी तीव्र साहित्यिक प्रगति हुई है। स्लोवाक एक प्रकार से चेक का ही वैभाषिक रूप है। दक्षिणी स्लाविक की सबसे प्राचीन भाषा बुल्गारी है। स्लाविक शाखा का प्राचीनतम साहित्यिक अवशेष बाइबिल का एक अनुवाद है, जो 8वीं शताब्दी के लगभग हुआ था। 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच संत सिरिल और मेथोडिविस ने धार्मिक साहित्य की रचना की। आज रूसी के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है, उसका निर्माण सिरिल ने ही किया था। आधुनिक बुल्गारी प्राचीन बुल्गारी से बहुत दूर हट गई है, वह प्रायः व्यूगात्मक हो गई है। उसमें ग्रीक, तुर्की, रोमानी एवं अल्बानी भाषाओं के शब्दों की बहुलता हो गई है। दक्षिणी स्लाविक की सर्वोक्रोतो युगोस्लोवा युगोस्लोव युगोस्लाविया दक्षिण की भाषा है। इसकी अनेक बोलियां हैं। यह स्लाविक की महत्वपूर्ण भाषा रही है। इसका साहित्य 12वीं शताब्दी से उपलब्ध होता है। स्लोवेनी यूगोस्लाविया के दक्षिण आद्रियातिक सागर के तट पर बोली जाती है। इसका उल्लेखनीय साहित्य उपलब्ध नहीं है। आठवां, आर्मीनी। आर्मीनिया की भाषा आर्मीनी है। यह क्षेत्र ईरान से सटा है, इसलिए इस पर ईरानी भाषा का प्रभाव है। अनेक शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग ईरानी के हैं। इसका ढांचा अलग है। यह बाल्टो स्लाविक और आर्य भाषाओं को जोड़ने वाली कड़ी है। उपलब्ध साहित्य 10वीं से 12वीं सदी का है। यह कुस्तुंतिया और कृष्णा सागर के किनारे बोली जाती है। नौवां, अल्बानी या इलिरी। अल्बानी इलिरी नामक एक व्यापक शाखा का अवशेष है, जिसके अध्ययन की सामग्री अत्यल्प है। केवल कुछ प्राचीन अभिलेख प्राप्त होते हैं, साहित्य का उसमें अभाव है। 16वीं शताब्दी का बाइबल का एक अनुवाद उपलब्ध है। 17वीं शताब्दी में इसमें साहित्य का प्रारंभ माना जाता है, जिसमें लोकगीतों की प्रधानता है। अल्बानी आद्रियातिक सागर के पूर्व स्थित पहाड़ी प्रदेश की भाषा है। लिखित रूप से आने के पहले अल्बानी में ध्वनि और पद रचना की दृष्टि से इतना अधिक परिवर्तन हो गया कि कुछ भाषा वैज्ञानिक उसे भारत यूरोपीय परिवार में रखने में संकोच करते थे। ग्रीक का नैकट्य स्लाविका का प्रभाव एवं वेनिस तथा तुर्की के राजनीतिक प्रभुत्व के परिणाम स्वरूप अल्बानी में विदेशी शब्दों की का बाहुल्य और निजी स्वरूप का अभाव है। 10वां, भारत ईरानी अर्थात आर्य। इसके दो वर्ग किए जाते हैं, भारतीय उपशाखा और ईरानी उपशाखा। पहला, भारतीय उपशाखा। विकास के आधार पर भारतीय आर्य भाषा के तीन भेद हैं। क, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा प्रारंभ से 500 ईसा पूर्व तक। ख, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा ईसा पूर्व 501 से 1000 ईस्वी तक। और ग, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से आज तक। क, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यह न तो एक समय की भाषा है और न एक क्षेत्र की, यह पूरे भारत की प्राचीन काल की भाषा है। इसका प्राचीनतम रूप वेदों में मिलता है और उसी काल में जनसाधारण के बीच व्यवहृत होने वाली भाषा कालांतर में लौकिक संस्कृत के रूप में साहित्यिक भाषा का स्थान ग्रहण करती है। अतः इसके दो रूप हैं, पहला वैदिक संस्कृत एवं दूसरा लौकिक संस्कृत। पहला वैदिक संस्कृत। संसार की भाषाओं में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन रूप वैदिक भाषा का है। इसमें भी ऋग्वेद के दूसरे से नवम मंडल में इसका प्राचीनतम रूप सुरक्षित है। वेदों की रचना विभिन्न समयों में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न ऋषियों द्वारा हुई है, इस कारण वेदों की भाषा में विविधता है। वेदों की भाषा साहित्यिक एवं लोक भाषा का मिश्रित रूप है। वैदिक भाषा का दूसरा रूप वेदों की परिवर्ती रचना ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों में मिलता है। वस्तुतः यह वैदिक भाषा रूप में के क्रमिक विकास की परिणति प्रतीत होते हैं। वैदिक भाषा का युग ईसा पूर्व 2500 से ईसा पूर्व 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इस समय तक आर्यों की सत्ता मध्य देश में स्थापित हो चुकी थी और धीरे धीरे इधर उधर दक्षिण पूर्व की ओर और उनके फैलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। इससे एक तरफ आर्यों की सत्ता का विकास हुआ तो दूसरी तरफ उनकी भाषाओं का भी, अर्थात विभिन्न स्थानीय भाषाओं के परस्पर संपर्क से आर्यों की भाषा के विभिन्न स्थानीय रूप बनने लगे। दूसरा, लौकिक संस्कृत का काल। यद्यपि ईसा पूर्व 1000 ईसा से ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व तक ही माना जाता है, किंतु इसका प्रचार प्रसार एवं प्रभाव आज तक माना जाता है। किसी भी भाषा का स्वरूप निर्मित होने से में एक लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। लौकिक संस्कृत की वैदिक संस्कृत काल में उपस्थिति नकारी नहीं जा सकती। जब वैदिक संस्कृत साहित्य की भाषा थी, उसी अवधि में लौकिक संस्कृत जनसाधारण की बोलचाल की भाषा के रूप में वर्तमान थी। धीरे धीरे वैदिक संस्कृत को अपदस्थ कर यह साहित्य की भाषा बनी। भाषा विकास की यही प्रक्रिया है। एक काल की साहित्यिक भाषा दूसरे काल तक जाकर जनसाधारण की भाषा बन जाती है और जनसाधारण के बोलचाल की भाषा साहित्य और शासन की भाषा। जनसाधारण में निरंतर भाषा का नया रूप बनता बिगड़ता रहता है। हिंदी के अतीत पर दृष्टि डाले तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी। कभी डिंगल एवं पिंगल साहित्य की भाषा थी तो कभी ब्रज और फिर अवधी। आज खड़ी बोली साहित्यिक भाषा के उच्च सिंहासन पर पदासीन है, पर अन्य भाषा रूप आज भी हैं। विकास की यह प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। आज भी हिंदी के अनेक रूप निर्मित हो रहे हैं। धीरे धीरे भोजपुरी साहित्यिक भाषा के निकट पहुंच रही है। प्राचीन आर्य भाषा की बढ़ती हुई भिन्नता से चिंतित होकर पाणिनी ने वैदिक भाषा का परनिष्ठीकरण किया। पाणिनी का संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी इसी प्रयास का प्रतिफल है। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप उसका एक रूप स्थिर हो गया और वह संस्कृत नाम से अभिहित हुई। आर्य पश्चिमोत्तर से पूर्व एक दक्षिण की ओर बढ़े थे, अतः आर्य भाषा के पूर्वी एवं दक्षिणी रूप ही स्थानीय भाषाओं के प्रभाव से अधिक प्रभावित थे। इसलिए पाणिनी ने संस्कृत के उदिच्य अर्थात उत्तरी रूप को आदर्श रूप स्वीकार किया एवं अन्य रूपों को शिष्ट प्रयोग से बाहर अथवा अपवादों के भीतर रखकर प्राचीन आर्य भाषा को ऐसी स्थिरता प्रदान की कि वह जन भाषा न बनकर देव भाषा बन गई। विशेषताएं: पहला, वैदिक भाषा श्रेष्ठ युगात्मक है। दूसरा, प्राचीन आर्य भाषा में 13 स्वर ध्वनियाँ थी। इनमें 9 मूल स्वर अ आ ई बड़ी ई ऊ ऊ री री एवं ली तथा 4 सांध्य स्वर थे ए ऐ ओ औ थे। ऐ एवं औ का उच्चारण क्रमशः आई एवं आऊ होता था। भाषा में स्वराघात का महत्व था जो 3 प्रकार का होता था, उदात, अनुदात और स्वरित। प्राचीन काल की भाषा में अपश्रुति का प्रयोग होता था, अर्थात शब्दों के मध्य स्वरों के परिवर्तन में अर्थ बदल जाता था। उदाहरण अर्थ: आप नोमी, मैं प्राप्त करता हूँ। आप नुमह अर्थात हम प्राप्त करते हैं। तीसरा, व्यंजनों के 5 वर्ग बन चुके थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। आर्येतर प्रभाव के कारण त वर्ग एवं प वर्ग इसके अतिरिक्त य, र, ल, व 4 अर्ध स्वर एवं श, श, स 3 उष्म तथा ह 1 महाप्राण ध्वनियाँ थी, 1 अनुनासिक तथा 1 विसर्ग ध्वनि भी थी। वैदिक भाषा में लुंठित ल, जिह्वामूल्य एम, उपाद, मानीय फ जैसी ध्वनियाँ थी जो संस्कृत में लुप्त हो गई। चौथा, इसकी रूप रचना में विविधता एवं जटिलता थी। शब्दों के रूप 3 लिंग, 3 वचन तथा 8 कारक के आधार पर बनते थे। इस तरह एक शब्द के कम से कम 24 रूप होते थे। पांचवा, विशेषण संज्ञा के समान ही परिवर्तित होते थे। छठवा, सर्वनामों के रूपों में पर्याप्त विविधता थी। सातवा, शब्द निर्माण में प्रत्ययों का प्रयोग होता था। आठवा, शब्दों की सामासिक रचना का भी विधान था। नौवा, क्रिया रूपों का परिवर्तन 3 वचन, 3 पुरुष एवं 2 पद, आत्मनेय, परस्मेय, 10 काल, लकार एवं 3 वाच्य के आधार पर होता था। धातुओं के विभिन्न समूह थे जिन्हें गण कहते थे। दसवा, क्रिया का रूपांतर भी प्रत्ययों के द्वारा होता था। शब्द प्रत्यय एवं क्रिया प्रत्यय अलग थे। ग्यारहवा, प्राचीन भाषा शब्द भंडार की दृष्टि से पर्याप्त समृद्धि थी। उसमें नए शब्दों के निर्माण की असीम क्षमता भी थी। ख, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। समय काल ईसा पूर्व 501 से 1000 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की अवधि ईसा पूर्व